आज कल
श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जहरा जैदी और कायम रजवी का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम ईरान के परमाणु समझौते के प्रति यूरोप के रुख पर पिछली चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहें।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि यूरोपीय आयोग के प्रमुख जॉन क्लोट यूनकर के अनुसार यूरोपीय संघ ने परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के परिणामों को निष्प्रभावी बनाने के लिए एक प्रतिरोधक कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने यह भी फैसला किया है कि यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की ओर से ईरान में पूंजी निवेश करने वाली विशेषकर छोटी कंपनियों के साथ सहयोग के मार्ग की बाधाएं भी दूर की जाएं। यूरोपीय संघ ने इसी प्रकार ईरानी पक्ष के भरोसे की बहाली के लिए ईरान में विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में पूंजी निवेश को अपने एजेंडे में शामिल किया है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ में जल, वायु और ऊर्जा के आयुक्त मैगोइल एरियसन कैंटे ने ईरान की यात्रा भी की।
यूरोप ने इसी तरह ईरान को तेल की बिक्री से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा को अन्य देशों के रिजर्व बैंकों में रखे जाने का प्रस्ताव भी गारंटी के रूप में पेश किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ ने अपने विचार में ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन इव लोद्रिया ने इस बारे में कहा कि यूरोप को ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों से यूरोपीय कंपनियों को बचाने की दिशा में कुछ सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोप अमरीकी प्रतिबंधों से मुकाबला करने के चरण में प्रविष्ट हो गया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार रुस्तम शाह मेहमंद कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कड़ाई से पालन के उद्देश्य से ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों का मुकाबला करने का इरादा रखते हैं और इसीलिए उन्होंने अमरीकी मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए ईरान के साथ वार्ता भी आरंभ कर दी है।
इस प्रकार की कोशिशों के बावजूद JCPOA के बारे में यूरोप के रुख के बारे में पारदर्शिता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये सवाल है कि यूरोप किस हद तक अमेरिका के सामने और ईरान के साथ खड़ा रह सकता है। इस संदर्भ में हालांकि यूरोप ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जॉन क्लोट यूनकर कहते हैं कि अमेरिका की ओर से JCPOA से निकलना विश्व शांति के लिए अच्छा नहीं है और परमाणु समझौते के पक्ष के रूप में हमें इस समझौते की रक्षा करनी चाहिए।
हालांकि सारे यूरोपीय देशों ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की है, लेकिन अमरीकी फैसले पर अंकुश लगाने के सिलसिले में यूरोप में समन्वय का अभाव है। हालांकि यूरोपीय नेता इसे स्वीकार नहीं करते। यूरोपीय संघ में विदेशी मामलों की प्रभारी फ्रेडरिका मोगरेनी ने बल दिया है कि JCPOA के बारे में सदस्य देशों की एकजुटता पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। वास्तव में इस बात में तो पूरा यूरोप एकजुट दिखाई पड़ता है कि JCPOA का संबंध यूरोप की सुरक्षा से है, लेकिन जहां तक अलग अलग देशों की बात है तो बहुत से देश अमेरिका से टकराव से बचते नजर आते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने तो खुलकर कहा है कि यूरोप ये नहीं चाहता कि वो ईरान की वजह से अमेरिका के साथ रणनीतिक युद्ध आरम्भ कर दे।
इसी मध्य यूरोपीय संघ में भी विवाद पैदा करने की कोशिश शुरू हो गई है और कुछ सदस्य अमेरिका का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के लिमोंड समाचार पत्र ने अपनी एक रिपोर्ट में पोलैंड की ओर से इस प्रकार के प्रयासों का उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के परमाणु समझौते को बचाने के लिए वाशिंगटन के सामने 28 देशों के मध्य एकजुटता बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये मुद्दा वाशिंगटन से टकराव का कारण नहीं बना। क्योंकि एकजुटता व महत्वाकांक्षा के ऐलान के बावजूद ब्रसल्स में एक प्रकार की अस्पष्टता दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ की एकजुटता को आजमाने का एक अन्य अवसर आ गया है। वास्तव में लिमोंड ने यूरोपीय संघ और नेटो में अमेरिका के स्थायी घटक पोलैंड की ओर संकेत किया है, जिसे यूरोप से अधिक वॉशिंगटन को खुश करने की चिंता रहती है।
इस संदर्भ में यूरोपीय संघ की बैठक और JCPOA के समर्थन के बावजूद पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि वारसा यूरोप की ओर से हर उस कदम का विरोधी है जिससे अमेरिका के प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो। उनके अनुसार ईरान में काम जारी रखने के लिए यूरोपीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने से अमरीकी प्रतिबंध कमजोर होंगे। उन्होंने अपने यूरोपीय मित्रों से अपील की कि वो अमरीका की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी संकेत किया कि हंगरी भी इसी प्रकार का विचार रखता है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने पूर्वी यूरोप में रूस और नेटो के टकराव का उल्लेख करते हुए बल दिया कि यूरोपीय संघ को पूर्वी यूरोप में रूस की भूमिका और अमरीकी घटक के समर्थन पर भी ध्यान देना चाहिए।
JCPOA के बारे में ईरान का रुख पूरी तरह से पारदर्शी है और ईरान ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो उसी वक्त तक JCPOA से जुड़ा रहेगा जब तक इससे उसके हितों की रक्षा होगी। दरअसल ईरान परमाणु समझौते में बाकी बचने वाले पक्षों से ये गारंटी चाहता है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों के बाद वे JCPOA से पहले की भांति व्यवहार नहीं करेंगे। विशेषकर ये मांग यूरोप, रूस और चीन से है, जिन्होंने JCPOA पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान चाहता है कि अमरीकी प्रतिबंधों की वजह से उसके तेल की खपत में कमी को ये पक्ष पूरा करें और यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम में ईरान की उपस्थिति बनी रहे। अगर ईरान इस प्रकार की गारंटी लेने में सफल रहा तो इस बात की संभावना है कि JCPOA ईरान और 4+1 गुट के मध्य होने वाले एक समझौते के रूप में जारी रहे।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने ईरान व यूरोप के मध्य व्यापक आर्थिक सहयोग के दृष्टिगत 2000 के दशक में परमाणु वार्ता के दौरान यूरोप के उल्लंघनों का उल्लेख किया और बल दिया कि यूरोप को ये साबित करना होगा कि वो पहले की तरह उल्लंघन नहीं करेगा। वरिष्ठ नेता ने कहा कि गत 2 वर्षों के दौरान अमरीका ने बारम्बार JCPOA का उल्लंघन किया और यूरोप चुप रहा। अब यूरोप को अपनी उस चुप्पी की कीमत अदा करनी चाहिए। वरिष्ठ नेता ने JCPOA से ईरान के जुड़े रहने के लिए 5 शर्तें पेश की। पहली शर्त ये पेश की कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव 2231 का उल्लंघन किया है, इसलिए यूरोप उसके खिलाफ एक प्रस्ताव जारी करे। दूसरे ये कि यूरोप ये वादा करे कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय भूमिका पर चर्चा नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह है कि यूरोप ईरान पर लगाए जाने वाले हर प्रकार के प्रतिबंधों का मुकाबला करे और अमरीकी प्रतिबंधों के सामने खुलकर खड़ा हो। चौथी शर्त यह रखी है कि यूरोपीय बैंक ईरान के साथ व्यापार की गारंटी दें। वरिष्ठ नेता ने ये शर्तें यूरोप के 3 बड़े देशों अर्थात जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के अतीत के दृष्टिगत रखी हैं। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा इन 3 उद्देश्यों से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उनके अतीत के दृष्टिगत हमें उन पर भरोसा नहीं है। वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर यूरोप हमारी मांगों को स्वीकार करने में विलंब करता है तो परमाणु गतिविधियां आरंभ करने के लिए ईरान का अधिकार सुरक्षित है। जब हमें ये लगेगा कि JCPOA से कोई फायदा नहीं है तो उसका एक मार्ग ये है कि हम छोड़ दी गई परमाणु गतिविधियों की ओर बढ़ें। वरिष्ठ नेता द्वारा पेश किया गया ये रास्ता वास्तव में JCPOA से ईरान के पूर्ण रूप से निकलने और समझौते के पहले के हालात की वापसी के अर्थ में होगा।
इस समय यूरोप के सामने कड़ी परीक्षा है और गेंद उसके पाले में है। यूरोप के पास ये अवसर है कि वो केवल अपने हितों के लिए और यूरोप की पूर्ण रूप से अनदेखी करके JCPOA से निकलने वाले ट्रंप के सामने एक बार डट जाए, या फिर वॉशिंगटन की मनमानी के आगे चुप रहकर न केवल ये कि अपनी स्वाधीनता गंवा दे बल्कि अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने में अपनी असमर्थता भी स्पष्ट कर दे। इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि JCPOA के अंत का क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर होगा और उसका बोझ भी दूसरों से अधिक यूरोप पर ही होगा।
अमरीकी मामलों के विशेषज्ञ फ्रेडरिक ओटरान का कहना है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते का मार्ग बहुत जटिल और लंबा रहा है और मध्य पूर्व में अस्थिरता के दृष्टिगत इस समझौते के हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए चाहे वो रूस हो, चीन हो, यूरोप हो, बल्कि चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, ये कदापि अच्छा नहीं होगा कि इस क्षेत्र की स्थिरता अधिक कमजोर हो। JCPOA के निरस्त होने की दशा में न केवल ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप की पोजीशन कमजोर होगी, बल्कि परमाणु वार्ता को गति देने वाले एक प्रभावशाली पक्ष के रूप में उसकी भूमिका भी कमजोर हो जाएगी। फिलहाल जो हालात हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि हालांकि यूरोप JCPOA को बचाने की गंभीरता के साथ कोशिश कर रहा है, वो अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों सहित उसकी शत्रुतापूर्ण कार्यवाही पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक क्षमता व शक्ति नहीं रखता। इसलिए यूरोप के तीनों प्रभावशाली देशों अर्थात जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को रूस और चीन के सहयोग से JCPOA को बचाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए।